ऑल ग्लोरी श्री श्री गुरु अन गौरंगा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमाम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। आप सबका स्वागत है पंचशील श्री श्री गौर नित्याय मंदिर में रविवार के भगवद गीता के सत्संग में। भगवद गीता का 17वां अध्याय चल रहा है। 17वें अध्याय का विषय है त्रिविभाग श्रद्धा। त्रिविभाग तीन प्रकार की श्रद्धा, तो विशेष शब्द है श्रद्धा। और भक्ति शुरू ही श्रद्धा से होती है। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए तो फिर साधु का संग मिलेगा। साधु का संग मिलेगा तो फिर भगवान का भजन शुरू होगा। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है भगत के जीवन में। श्रद्धा का होना, श्रद्धा ही भगत बना ही श्रद्धा का होता है। वैसे हर आदमी श्रद्धा का ही बना होता है। श्रद्धामयो अयम पुरुष, भगवान कहेंगे श्रद्धामयो। श्रद्धामयो मतलब श्रद्धा का ही बना हुआ आदमी है। तो इस अध्याय के 10 श्लोक आपने किए हैं पहले। अब ऐसे करते हैं, हम ये शुरू कहाँ से, क्यों अध्याय ये शुरू हुआ, वहाँ से लेकर और यहाँ तक लाके पूरा करते हैं। 12वें जहाँ तक छोड़ा है वहाँ से एक दो श्लोक आगे बढ़ा देंगे। लेकिन शुरू करते हैं आप 16वें अध्याय का आखिरी दो श्लोक, लास्ट 16वें अध्याय के दो श्लोक लास्ट निकालिए तो पता लगेगा शुरू क्यों हुआ ये श्लोक। 23वां श्लोक 16वें अध्याय का देखिए, पढ़िए हमारे साथ। यह शास्त्र विदिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। अब इसका अर्थ है यह मतलब जो लोग भी शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य मतलब शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके वर्तते काम कारत अपने इच्छाओं के अनुसार जो चाहे वो करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को नहीं मानते हैं उनको छोड़कर उन्हीं का अतिक्रमण करके जो उनको अच्छा लगता है उसके अनुसार अपना कर्म करते हैं तो उनको क्या होता है न सिद्धि मापन होती, उनको सिद्धि भी नहीं मिलती है, न सुखम और सुख भी नहीं मिलता है, न पराम गति और न परम गति मिलती है। तो शास्त्र का जो उल्लंघन करता है अपनी मर्जी से जो चाहे वो करता है वैसे आदमी के न परम गति न सुख न सिद्धि तीनों नहीं मिलते हैं। और फिर भगवान आदेश दे रहे हैं, इसके बाद वाला श्लोक पढ़िए, तस्मात् शास्त्रम् परमाणं ते कार्या कार्ये विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम् इहारसि। इसलिए तस्मात मतलब इसलिए शास्त्र विधिम प्रमाणम शास्त्र के प्रमाण को सामने रख के और व्यवस्थित रूप से काम करना चाहिए। व्यवस्था का मतलब यह है शास्त्र जो कहता है करना चाहिए वो करना चाहिए, जो शास्त्र मना करता है उसको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हुआ व्यवस्थित करना, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे जो जानता है ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम शास्त्र ने जो बोला है उसको जो जानता है वो ठीक तरह से इस दुनिया में कर्म कर सके। यह मतलब इस दुनिया में वो आदमी ठीक तरह से काम करके आगे बढ़ेगा। तो ये दो बातें हो गई, एक बात तो ये हो गई कि शास्त्र की कोई बात नहीं माने जो चाहे वो करे, और एक बात जो शास्त्र का अनुसार काम करे उसका ये फल होगा। अब अर्जुन ने तीसरा एक प्रश्न बीच में उठाया, क्योंकि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है। अर्जुन ये भी कहता है शास्त्र को तो नहीं मानता लेकिन श्रद्धा तो बहुत अच्छी है उसकी श्रद्धा तो बहुत अच्छी है। एक और प्रश्न, तीसरा प्रश्न उठाया, एक तो शास्त्र के ऊपर नहीं चलते हैं वो तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, जो शास्त्र पे चलते हैं उनको फायदा होता है। अब दोनों के बीच का रास्ता अर्जुन पूछ रहा है, शास्त्र पे तो नहीं मानते चलते हैं लेकिन श्रद्धा तो बहुत अच्छी है, विश्वास तो किसी के ऊपर पूर्ण कर लिया है तो उनकी क्या गति होगी। जैसे आप ये समझ लें कि शास्त्र में तो बहुत से ऐसे आजकल मत चल रहे, ऐसे पंथ चल रहे हैं जिनका शास्त्र के अंदर कोई प्रमाण नहीं है। कई ऐसे पंथ चल रहे हैं जो 100 साल 150 साल 200 साल 300 साल से जिनका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है लेकिन उनकी श्रद्धा अपने गुरुजनों के ऊपर बहुत ज्यादा है, उनकी श्रद्धा अपने मत के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उनकी गति क्या होगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है अर्जुन का कि बहुत से लोग शास्त्र नहीं जानते हैं, आदिवासी है शास्त्र तो नहीं जाते लेकिन उनके अपने वो एक विशेष देवता है उसके ऊपर इतनी उनकी श्रद्धा होती है कि वो उसकी पूजा के लिए सब कुछ कर देते, तो उनका क्या होगा। तो अब ये अर्जुन प्रश्न इसलिए पूछेगा, तो अर्जुन का प्रश्न, ये 17वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन वाच ये शास्त्रम विधिम उत्सर्ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। इसका अर्थ हुआ अर्जुन कह रहे हैं, ये अर्जुन के शब्द हैं, जो शास्त्र के विधि को नहीं मानता उसको छोड़ दिया, उत्सर्ज छोड़ दिया लेकिन पूजा तो बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, ऐसे लोगों की निष्ठा हे कृष्ण कैसी है, सतोगुणी है रजोगुणी है या तमोगुणी। उन लोगों की निष्ठा, तो श्रद्धा के बाद निष्ठा आएगी, श्रद्धा शुरुआत है और निष्ठा उसका बीच का अंग है। निष्ठा का मतलब यह है कि अब बस यही हमारे लिए सत्य है, हम इधर से हिलने वाले नहीं है। निष्ठा का मतलब कहीं कीला गाड़ देने का, हम यहां से हिलने वाले नहीं, उसको निष्ठा बोलते। आदमी किसी ने कहा कि धरती का गोल भाई धरती का सेंटर कहां है, तो एक आदमी ने कीला लगाया, यहां कीला गाड़ दिया, बोला यहां है, बोला कैसे बोलते हो, जाके मापो, हमारा लाइफ लिस्ट आया कि यही है, कौन नाप के आएगा? तो मानना ही पड़ेगा ना, नापेगा कौन जाके? तो निष्ठा का मतलब ऐसा विश्वास है कि इसके अलावा और कहीं हम नहीं जाते हैं, निष्ठा उसको कहते हैं। तो उन लोगों की निष्ठा कैसी है, सतोगुण की है, रजोगुण की है, तमोगुण की है? तो अब प्रश्न क्या हुआ, शास्त्र तो नहीं मानते लेकिन श्रद्धा बहुत अच्छी है, तो इसलिए अब जो भी बात होगी इस अध्याय में वो श्रद्धा के ऊपर होगी। अब भगवान क्या कहते हैं, अब भगवान का उत्तर सुनिए, अर्जुन को भगवान उत्तर देते, पूरा अध्याय बोलेंगे। पहले श्लोक में श्री भगवान वाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा, देही नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चैति तां श्रणो। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान की शब्द त्रिविधा भवती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। त्रिविधा, ये विधि नहीं है, विधा है। हाँ, विधि और विधा में अंतर होता है, ये विधा है। विधा का मतलब शैली, काम करने की शैली, विधि का मतलब काम करने का रास्ता। तो त्रिविधा, तीन प्रकार का जो है लोगों का भाव होता है, काम करने का भाव होता है। त्रिविधा भवती श्रद्धा कैसी होती है, त्रिविधा भवती श्रद्धा, फिर क्या शब्द है, देही नाम सा स्वभाव जा। अब इसके बाद भगवान एक बात कह रहे हैं कि यह श्रद्धा स्वभाव जा, जा का मतलब पैदा होती है, जा का मतलब जन्म लेती है। ये श्रद्धा कहां से जन्म लेती है, स्वभाव से जन्म लेती है। तो आदमी का स्वभाव सतोगुण रजोगुण तमोगुण का होगा, वैसी उसकी स्वभाव श्रद्धा बनेगी। देही नाम का मतलब यह है जिसको शरीर है, तो जो देही है वो भी तीन गुणों की बनी हुई है। जो हमारी देही है वो प्रकृति से मिली है, वो तीन गुणों की बनी हुई है। तो वही तीन गुणों से जो हमारा स्वभाव बना है वही हमारी श्रद्धा को जन्म देता है। तो हमारी श्रद्धा को जन्म कौन देता है, हमारी श्रद्धा को जन्म देता है हमारा स्वभाव। और हमारा स्वभाव कैसे बनता है, हमारा स्वभाव बनता है तीन गुणों से, कौन से, सतो अथवा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान शृणो, और तीसरी तामसी। सात्विकी राजसी तो भगवान कह दिया ठीक है, तामसी को कहने का भाव यह है कि तामसी की बहुत नीचे की होता है, वो स्वभाव नहीं होना चाहिए। तीनों को अलग कर दिया, वरना तीनों साथ कह सकते थे। कभी कहने का एक ऐसा ढंग होता है कि भैया ये बात तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात तो ये है, बाकी इनकी बात बारे में बताता हूं, इसका मतलब ये तुम्हारे को नहीं करनी चाहिए। तो ये भाव इसमें ये है कि सात्विक की जो है वो तो ठीक है श्रद्धा फिर भी, लेकिन इससे नीचे की श्रद्धाएं वो ठीक नहीं है, लेकिन स्वभाव से बनती है, क्या कर सकते है? तो ये श्लोक श्रद्धा से क्या होता है, प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक के भावार्थ में लिखा है, श्रद्धा के विषय में चौथे अध्याय में श्लोक आया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान क्या है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और दोनों का मालिक कौन है, और दोनों को जानता कौन है, ये जो जानता है उसको ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान मिलता कहां से, श्रद्धा से मिलता है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में, श्रद्धा और हमारी निष्ठा, इसके ऊपर हमारा जीवन का पूरा निर्भर है कि हम किस तरफ जाएंगे। तो भगवान इसके बाद वाले श्लोक में एक बात सिद्धांत बताते हैं, क्या सिद्धांत बताते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो य श्रद्धः स एव स। सत्व अनुरूपा, सत्व मतलब जो हमारा वजूद है, एग्जिस्टेंस, जो हमारा वजूद है, जो हमारा अस्तित्व है, अनुरूपा उसके अनुरूप ही हमारी श्रद्धा होती है। तो हमारे वजूद के अनुरूप ही हमारी श्रद्धा होती है। सत्वानुरूपा, सत्व अनुरूप, अनुरूप मतलब उसके रूप वाली, किसके, सत्व मतलब हमारे अस्तित्व या हमारे वजूद के रूप वाली श्रद्धा होती है। हा? सर्व से मतलब सबकी श्रद्धा। और श्रद्धामयो अयम पुरुष हो, और ये पुरुष जो है इस दुनिया में जो व्यक्ति है वो श्रद्धा का ही बना हुआ है, उसको उसका जीवन है ही श्रद्धा, किसी न किसी ऊपर उसकी श्रद्धा है ही, बगैर श्रद्धा के ये दुनिया में कोई नहीं चलता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, चेतन चरित्र में एक शब्द है श्रद्धा और विश्वास, उसको विश्वास ही कहते हैं। तो इस संसार में विश्वास के बगैर तो कोई नहीं जीता है, संसार में श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ही तो दुनिया चल रही है। हाँ, बगैर विश्वास के तो कोई काम होता ही नहीं है, बगैर श्रद्धा के भाई नहीं। श्रद्धा हमारी दुकानदार के ऊपर श्रद्धा है कि जो सामान दे रहा है वो ठीक दे रहा है, इसमें जो हम आटा लाए हैं इसके अंदर जहर नहीं मिला है, वो है श्रद्धा है, तभी तो खाते हैं ना। बाजार से लाते हैं, कोई चेक थोड़ी करते हैं जाके केमिकल लेबोरेटरी में कि इसमें कोई खराब तो नहीं चीज मिली है। दुनिया के ऊपर तो हर एक चीज के ऊपर श्रद्धा है हमारी। हाँ, तो ट्रेन में चढ़ के रात को सो जाते हैं, ये तो नहीं पूछते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर जो है वो है कि नहीं है, हमारा काम तो नहीं है, कोई पूछ देखने गया कि ड्राइवर बैठा है कि नहीं बैठा है, कि सोया हुआ तो नहीं है, शराब तो नहीं पिया, कोई पूछता थोड़ी है उसको। तो ये दुनिया सारी श्रद्धा के ऊपर ही तो चल रही है। वो एक 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 घर की लड़की एक लड़के के साथ विवाह करके जाती है और समझती है कि सारी उम्र मेरा पालन पोषण करेगा, श्रद्धा है और क्या है, विश्वास नहीं है तो और क्या है। छोटा बच्चा घर में है तो समझता है कि मेरे का पालन पोषण मेरा परिवार करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, श्रद्धा है और क्या है। ये दुनिया पूरी तो श्रद्धा के ऊपर ही चल, श्रद्धा मयो अयम पुरुष है, ये आदमी तो श्रद्धा का ही बना हुआ है, बगैर श्रद्धा के तो कोई काम दुनिया में होता ही नहीं है। तो आपका कारोबार लाखों का करोड़ों का, ये तो विश्वास और श्रद्धा के ऊपर होता है ना। दुनिया के ऊपर कई लोग ऐसे पार्टियां हमने देखी है जो कभी आपस में मिले नहीं है लेकिन करोड़ों का व्यापार चल रहा है, ड्राफ्ट आ जाते हैं, सामान जाता है, लेकिन आदमी आदमी को मिलते कभी पता नहीं शादी मुरादी में, अचानक अच्छा आपको फलाना है तब मालूम होता है। तो श्रद्धा के ऊपर ही तो सब चल रहा है संसार में, नहीं है तो श्रद्धा किसके ऊपर हमारी, नहीं है भगवान के ऊपर नहीं, बाकी सब चीजों के ऊपर श्रद्धा है। इसलिए भगवान कहते हैं मां सोचे अरे बाबा तो परेशान मत हो, सबके ऊपर श्रद्धा करते हो, थोड़ी मेरे ऊपर भी करके देख लो। जिसके ऊपर श्रद्धा, हम तो मने हुए हैं हम श्रद्धा के, श्रद्धा मयो का मतलब ही जैसे कि कभी कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं, अरे पापा ये लवणमयी सर्दी हो गई, ये कैसी सब्जी है, बोला लवणमयी सर्दी, नमक ही नमक पड़ा है, ये सब्जी है ही नहीं नमक ही लग रहा है, तो इसको कहते हैं लवणमयी। अरे क्या बाबा शरबत क्या है, ये तो चीनी ही चीनी है बाबा, ये जूस कहां से आया, तो कहते हैं शक्करमयी। तो श्रद्धा मयो कि आदमी तो बना हुआ ही श्रद्धा का है, उसका जीवन श्रद्धा के ऊपर ही निर्धारित है, किसी न किसी के ऊपर श्रद्धा करनी पड़ेगी। कोई आदमी बगैर श्रद्धा के रह सकता है इस दुनिया में, किसी को विश्वास तो है ना कि रात को भाई भोजन कहीं से मिलेगा, तो विश्वास के बगैर तो एक सांस भी नहीं चलता है हमारा। तो श्रद्धा मयो अयम पुरुष हो एक सिद्धांत है कि श्रद्धा से ही जीवन चलता है। अब कौन सी श्रद्धा किसकी है, इससे आदमी की पहचान होती है। तो यो जो जिसकी श्रद्धा है वैसा ही वो आदमी है, ये आदमी कैसा पहना जाए, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा जिसका वैसा आदमी, तो वैसे भी आदमी कैसे, जैसे जिसका भाव है वैसे ही वो आदमी अपने जो आदमी का श्रद्धा भाव है उसके हिसाब से आदमी पहचाना जाएगा कि इसकी श्रद्धा कैसी है। तो कुछ लोगों की श्रद्धा होती है भाई, जैसे आप लोगों की श्रद्धा है कि रविवार को भगवद गीता के सत्संग में जाना है, भगवान का प्रसाद खाना है, तो ये सत्वगुण की, शुद्ध सत्वगुण की श्रद्धा है। कुछ लोगों की श्रद्धा होती है नहीं भाई आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज हमको कहीं पार्टी में जाना है, ये रजोगुण की श्रद्धा है भाई घूमना है फिरना है खाना है, तो वो लोग अपने जैसे लोगों के साथ बैठ जाएंगे। कुछ लोगों की श्रद्धा है कि आज तो छुट्टी का दिन है उठना ही नहीं है, सारा दिन सो के आराम करना है, तमोगुण की श्रद्धा है उठना ही नहीं चाहते, ऐसे लोग भी होते हैं कि भाई आज तो छुट्टी का दिन है आज कहीं नहीं जाना आज आराम करना है सोए रहेंगे सारा दिन, तो ये तमोगुण की श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा तो उस वैसे ही लोग आपस में इकट्ठे होंगे। कुछ लोग होते हैं हमारे, हम कहते हैं कि सैटरडे को हमारे पास आके मंदिर में नहीं गया आपको सुबह 4 बजे उठाऊंगे, हम कहते हैं छुट्टी का दिन नहीं है, हॉलीडे नहीं है, होलीडे है आज, चलो मंगल आरती चलेंगे, मतलब आज छुट्टी का, आज हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप सवेरे उठ जाएंगे कल हम आपके पास बैठेंगे, उनका वो हमारे साथ नहीं चल सकते, उनकी श्रद्धा हमारे साथ मेल नहीं खाती। तो आप लोग संसार में आपकी दोस्ती भी उन लोगों से होती है, उठना बैठना भी उन लोगों से होता है जो आपकी श्रद्धा के अनुसार होते हैं, जो आपके नेचर से जो मिलते हैं वो आपकी श्रद्धा, श्रद्धा कहां से बनती है, नेचर से बनती। तो अपने नेचर वाले लोग, इसलिए सोसाइटी बनाई प्रभुपाद जी ने। सोसाइटी बनाने का अर्थ ही है कि एक नेचर वाले लोग कहीं साथ बैठे, नहीं तो हम अकेले समाज के अंदर हम कहेंगे नहीं भैया हम जो है वो हमारा ऐसे नेम है कि हम भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, तो लोग कहेंगे अरे भाई कहाँ तुम, हमारी मुसीबत पड़ गया परिवार में, कहाँ तुमको बिठाएं, हमारे समाज में भाई में बहनों में तुमको कहाँ ले जाएं, न खाता है न पीता है। लेकिन फिर हम देखते हैं 25-50 हमारे और साथी हैं जो नहीं खाते हैं हमारे साथ, अरे सब ये तो तिलक लगाए हुए हैं तो 50-60 हाथ हो रहे हैं, हम अकेले थोड़ी हैं, तो हमारा एक समाज बन जाता है तो फिर हम जी सकते हैं। तो एक समाज एक जैसी श्रद्धा वालों का समाज बनता है, तो ये सोसाइटी है कृष्ण भावना। कृष्ण के ऊपर जिनकी श्रद्धा है उनकी सोसाइटी। भावना श्रद्धा, ये श्रद्धा से भावना उत्पन्न होगी, भाव श्रद्धा की परिकाष्ठा है। श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है और भाव पे भक्ति खत्म होती है और फिर प्रेम अपने आप उत्पन्न होता है। तो श्रद्धा से भाव तक, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है रूप गोस्वामी पाद का। श्रद्धा से भाव तप की मंजिल साधना से पूरी की जाती है और भाव के बाद प्रेम अपने आप उदय होता है। प्रेम का उदय, प्रेम तो सबके हृदय में है ही, लेकिन श्रद्धा से शुरू होना है और भाव तक पहुंचना है। तो ये कृष्ण भावना संस्था का मतलब है जिनकी श्रद्धा भगवान के वचनों के ऊपर है, भगवद गीता भागवत के ऊपर है, वो लोगों का संग है जो भावना में भगवान को अपने चित्त में बिठा के रखते हैं। तो एक समाज है, तब हमारा अपना समाज है एक, जो लोग हम कहते हैं ना भाई हमारा ये मियाँ वाली का समाज है कि ये बाहुलपुरी समाज है कि हमारा ये पिशावरी समाज है, क्योंकि उनकी अपनी रीति रस्में अलग होती हैं, तो शादी में उठने बैठने में उनको आसानी होती है। ऐसे हमारा ये अच्युत समाज है, इस नाम का समाज का नाम है अच्युत समाज हमारा। कभी पंडित जी आपको पूजा कराते हैं ना, पूछते हैं गोत्र क्या है, पूछते हैं ना गोत्र, कभी आप अपना गोत्र बताओ, तो हमारा गोत्र है अच्युत गोत्र। कृष्ण भावना भावित भक्तों का गोत्र कोई पूछेगा, अच्युत गोत्र उत्पन्न भगवान अच्युत का गोत्र है हमारा, बाकी जो गोत्र हैं वो सब अपनी जगह पे, ये अच्युत गोत्र है स्पेशल हमारा। इनफॉलेबल, अच्युत मतलब इनफॉलेबल, तो अच्युत गोत्र कहते हैं हम, क्योंकि हमारा अपना समाज है, हमारा उठना बैठना खाना पीना उसका एक ढंग अलग है। वो कैसा है, वो शुद्ध शतोगुण का है। ये 17वें अध्याय में तीन प्रकार की श्रद्धा बताई जाएगी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की, लेकिन हमारी जो कृष्ण भावना की श्रद्धा है वो शुद्ध सतोगुण की श्रद्धा है, वो इससे बहुत ऊपर है, वो शुद्ध सतोगुण की श्रद्धा है, उसका उठना बैठना अलग है। तो आइए इसके आगे वाले श्लोक में भगवान ने कहा श्रद्धा मयो अयम पुरुष है, ये पुरुष है ही श्रद्धा का बना हुआ। और उसके बाद श्रद्धा जो है या फेथ या विश्वास है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद अब श्रद्धा जिसकी सत्वगुण की है वो क्या करते हैं, उनका वर्णन भगवान करते हैं चौथे श्लोक में। चौथे श्लोक में वर्णन किसका है, सत्वगुणी लोगों का, पढ़ते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणांश्च अन्य यजन्ते तमसा जनाः। तो सत्वगुण के लोग जो हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। रक्ष यक्ष और राक्षस, वैसे यक्ष कहते हैं, रक्ष यक्ष जो है ना, यक्ष कुबेर यक्ष है जो धन का देवता है, धन का देवता है यक्ष है, एक यक्ष की अपनी नगरी है। यक्ष रक्षांसी, जो संसार में भोग विलास और धन के पीछे भागते हैं वो इनकी पूजा करते हैं ऐसे लोगों की। तो ये और देवताओं की पूजा करते हैं सतोगुण के लोग, रजोगुण के लोग ऐसे लोगों की। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, दूसरी जब जंग लगी थी तो एक आदमी जो है वो बड़ा हिटलर की पूजा करता था। अरे क्यों भाई तुम, बोला हिटलर के वजह से एक धाम बढ़ गए हैं, पैसा बहुत कमा लिया है। तो यक्ष, यक्ष का मतलब जहां से पैसा ज्यादा मिले उसकी हम पूजा करते हैं। तो प्रायः लोग उसी की पूजा में लगे हैं जहां से धन ज्यादा मिले या भोग की सामग्री ज्यादा मिले। और तमोगुण के लोग भूतों की पूजा करते हैं। आपको प्रायः लोग भूत पूजा करने वाले, वो मजारों के ऊपर जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो ये तमोगुण की नीची, जिसकी श्रद्धा बहुत नीचे होती है, वो ऐसे जाते हैं कि किसी मजार के ऊपर चले जाएंगे, किसी कब्र के ऊपर चले जाएंगे, रोड के ऊपर बने हुए वहां बैठे हुए आपको लाइन में लोग मिलेंगे। तो ये श्रद्धा उनकी तमोगुण की श्रद्धा है, बहुत नीचे की श्रद्धा है। तो आपको कसौटी एक मिलती है, जैसे सोने वाले को कसौटी होती है, कितना क्रेट का सोना है। अब लोग कहां जा रहे हैं उससे आप आज लोगों को पहचान सकते हैं कि लोग कैसे हैं, कौन से श्रद्धा वाले, किसके साथ हमारे को संग करना चाहिए। सतोगुण के लोग देवता की पूजा करने जाते हैं, रजोगुण के लोग दुनिया के पीछे ही भागते रहते हैं, बड़े से बड़े कंपनी, इससे ये सेट नहीं है, वो सेट ठीक है, यानी वो ठीक है, उससे ज्यादा फायदा होगा वो। तमोगुण वाले भूत प्रेत की पूजा, काला धंधा करना इधर से उधर, तो वो नीचे की है। तो तीनों श्रद्धा वाले लोग किसकी पूजा करते हैं इसका यहां वर्णन है। तो भूत प्रेत की पूजा भी बहुत ज्यादा अपने देश में होती है और कई जगहों पर होती है, तो ये नीचे की पूजा है। फिर तपस्या की बात करते हैं, तो ये पूजा आ गई तीन प्रकार की। अब देखिए, इसमें शुद्ध शतोगुण की पूजा की बात नहीं की है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि मेरी पूजा कौन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं शतोगुण वाले। तो देव पूजा करने वाले सतोगुणी लोग होते हैं और भूत प्रेत वाले तमोगुण के होते हैं। तो ये पूजा आपको प्रायः किसकी देखने में मिलती है, चारों ओर आपने देखा है, प्रायः पूजा आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे देवी देवता वाले, जो धार्मिक लोग हैं देवी देवता, तो वो सतोगुण में है, सतोगुण की प्रवृत्ति उनमें है। और फिर उससे ज्यादा आपको भूत प्रेत की पूजा वाले मिलेंगे, वो लोगों की पहचान हो जाती है कि लोग किस तरफ उनका रुझान है या किस तरफ उनका झुकाव है, उनकी श्रद्धा कहां जा रही है। तो ये श्रद्धा हमारी, और अभी तप कैसा होता है, अब श्रद्धा तप तपस्या, एक एक पहली बात हुई पूजा, अब है तपस्या। अच्छा, वो अभी इसके बाद वाले अध्याय में आएगा, यज्ञ तप। हाँ, तीन कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, कौन से, तप यज्ञ और दान कर्म न त्यजेत पावनानी मनी, उसके बाद वाले श्लोक में। हाँ, तो इसलिए ये बात आ रही है, पूजा तप आएगा फिर यज्ञ आएगा, इस तरीके से इसमें भी तीन श्रद्धा का विभाग में अलग अलग चीजें आएंगी। तो आइए इसके बाद तप के बाद में सुनते हैं तप कैसा होता है। अशास्त्र विहतम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः करिष्यन्ति शरीरस्थम् भूत ग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान विद्य आसुर निश्चयान। फिर तो तमोगुण से भी ऊपर भगवान कहने लगे कि ऐसा तप जो करते हैं, जो उसका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन घोर बहुत तप करते हैं। क्यों तप करते हैं, दंभ के कारण, लोग समझेंगे मैं बड़ा तपस्वी हूं, अहंकार के लिए कि भाई दुनिया को बताने के लिए, हमने देखो 50 दिन तक कुछ नहीं किया, खाया, एक पांव पे खड़े रहे। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे तपस्या करते हुए, जो कहीं एक आदमी एक पांव पे खड़ा होता था, बोला एक महीने तक खड़ा होऊंगा। तो रात को ट्यूशन से कोई 1 बजे आ रहा था, उसको देखा खड़े हुए, वो तो उस वक्त लेटा हुआ था, उसने बोला, तुमने बोला एक पांव पे खड़ा होता हूं, तो रात को सो रहा है, बोला तू जो रुपया देना है तू मत देना, तुमको जो मुझे रुपया देना है मत देना, लेकिन अपनी बात ऐसे करेंगे भाई हम सारी रात एक महीना महीना तप करते। तो ऐसे तप करने वाले बहुत से आपको मिलेंगे, इसको हठ योग कहते हैं, हठ योग है। हठ योग में गर्मी में चारों ओर आग जला के बैठेंगे, सर्दियों में पानी की नदी के अंदर खड़े हो जाएंगे बर्फ में। तो हठ योग जो है उसका वर्णन है। तो हठ योग वाले क्यों करते हैं बाद में दिखाते हैं। अरे ये महात्मा कौन सा है, ये महात्मा एक साल से बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं, ये महात्मा तो रात सारी जागते रहते हैं, कभी सोते भी नहीं, अपने तप में रहते हैं, बड़े ध्यान में रहते हैं। वो दूसरी बात है कि महात्मा भले भंग पी के और मस्त होकर सोया हुआ हो, लेकिन कहेंगे ऐसे। और ये झूठ नहीं है। हम किसी एक अखबार में आया था कुंभ मेले के अंदर एक लाख आदमी ने स्नान किया और 1.25 लाख रुपये से ज्यादा का चर्च पिया। जितने आदमी ने स्नान किया उससे ज्यादा का जो नशा वहां किया गया। और आम जाम देखा है आपने, उधर होता है, देखा है कभी साधु जो तप करते हैं उनके सामने यही सुल्फी और नशा, ये देखा है फोटो में, देखते हैं कि नहीं? तो ये तप है, ये तप है, हठ योग वाला तप है। और करते हैं साधु ये तप भी बहुत ज्यादा होता रहता है। क्यों करते हैं तपस्या, तकलीफ देते हैं शरीर को। और फिर भगवान कर्षंति, अपने शरीर को कर्षण करके खत्म कर देते। हिरण्यकश्यप ने कैसा तप किया था, एक पांव पे खड़ा था हिरण्यकश्यप और हाथ दोनों ऊपर करके, हाँ ऐसे हाथ करके खड़ा था और ये सारे हरी हड्डी शरीर का मांस खा गए आके जीव जंतु, और ऊपर सा जो है वो जाला जैसा बन गया मकड़ी का। इतना बड़ा तप किया था, घोर तप किया था। लेकिन हिरण्यकश्यप को आदमी कहते क्या है, असुर। वो भगवान कहते हैं कि अरे ये शरीर जिस चीज का बना हुआ है, भूत ग्रामम अचेतसः, अचेतसः मतलब इतने मूर्ख है, इतने बेवकूफ है, उनको इतनी बुद्धि भी नहीं है कि ये जो चीज है जिस चीज का शरीर बना है उसको अभी नाश कर रहे हैं। और उसको तो छोड़ो, मैं परमात्मा के रूप में हृदय में बैठा हूं, उसका भी ध्यान नहीं है, उसको भी कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसे तप करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने विशेष रूप से लिखा है कि सियासी अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए भूख हड़ताल करना कोई तपस्या नहीं। तो एक भूख हड़ताल ये आम जाम चलती रहती है ना कि खाएं, हम एक महीने से भूख हड़ताल करेंगे। तो भूख हड़ताल आजकल आम जाम सुनने में आती है, नहीं हंगर स्ट्राइक। तो ये एक तपस्या है, शास्त्र में नहीं है, अशास्त्र विधि शास्त्र की नहीं है और इसका उद्देश्य भी कोई नहीं है। तपस्या अवश्य करनी चाहिए। हमारे लिए तपस्या क्या है, प्रभुपद के वर्ष तपस्या, तपस्या सुबह सवेरे उठ के स्नान करना तपस्या। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के सूरज उगने से पहले स्नान करना तपस्या। एक जगह बैठ के भगवान का नाम जपना तपस्या है। ये तपस्या घोर नहीं है, ये शुद्ध सात्विक तपस्या है। तपस्या तो करनी चाहिए लेकिन शास्त्रों में जिसका निषेध है वो नहीं करनी चाहिए। और ऐसी तपस्या अपना नाम दंभ अहंकार दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करनी चाहिए। मेरा काम नहीं होगा तो मैं यहां खड़ा रहूंगा, यहां से मैं जाने वाला नहीं हूं। ये तपस्या जो है ये असुर निश्चयम, ये निश्चित रूप से असुरी तपस्या या तमोगुण की तपस्या। तो ये तपस्या को सतोगुण और रजोगुण की तपस्या का तो जिक्र किया ही नहीं है भगवान ने, यह केवल जो नहीं करने वाली तपस्या है उसका वर्णन किया है और असुरी कहकर उसको खत्म कर दिया। तो यह बड़ा आश्चर्य लगता है कि तपस्या तीन प्रकार की कौन सी है, यानी कि 18वें अध्याय में आज दोबारा कहेंगे, यहां पूरा नहीं कह पाए, इसके बाद एकदम आहार के ऊपर चले गए। क्यों भगवान के मन में ऐसे आया कि तीन प्रकार का नहीं कहा कि सतोगुण के लोग देवताओं की पूजा कर रहे तो सतोगुण वाले कौन सा तप करते हैं, रजोगुण वाले कौन सा करते हैं, तब वो नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है मालूम नहीं, लेकिन कहा नहीं। और ये दो श्लोकों में है, ऐसे ही घोर तप करने वाले जो शास्त्र से नहीं मानते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, उन लोगों का वर्णन करके उनको असुरी कहकर और एकदम भगवान भोजन के ऊपर चले गए हैं। क्यों ऐसे भगवान के मन में भाव आया, कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान तो स्वतंत्र है, स्वराट है, जो चाहे वो करें। लेकिन तपस्या के पीछे भी देखो, तपस्या जब भी आती है तो उसमें व्रत का वर्णन होता है। तो तपस्या में खाना छोड़ दिया, ध्रुव ने क्या किया तपस्या, पहले महीने में भाई पहले अन्न खाया, दूसरे में जल पिया, तीसरे में हवा खाई। तो तपस्या के लिए कुछ खाना पड़ता है। तो कौन सा आदमी कैसी तपस्या करता है उसका पता उसकी खान पान से लगता है। तो खान पान से उसकी तपस्या की पहचान होती है। कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए आदमी वो छोड़ता है तो ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। ये भी बड़ी तपस्या है। तो तपस्या की पहचान उसके खान पान से पता, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी आवश्यकता जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो तो भोजन की है। दुनिया के अंदर आदमी दुनिया के अंदर भटकता है सिर्फ पेट के लिए, भोजन के लिए ही तो भटकता है ना। तपस्या करता है तो काय के लिए, अल्टीमेटली भाई मेरा नाम हो कुछ ना कुछ, मेरा मान हो सम्मान हो। तो उस पीछे के सबके पीछे घूम फिर के ऐसे लगता है कि ये तपस्या का वर्णन करते ही भगवान के जो है भाव में ये आया कि आदमी के खान पान से उसकी तपस्या की पहचान होती। आदमी तो वैसे आदमी जैसा खाता है वैसा ही अन्न खाएगा, वैसा ही मन होगा, वैसा ही उसकी श्रद्धा होगी, पूरी श्रद्धा ही वैसी होगी, लेकिन तपस्या के समय उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका वर्णन है। इसलिए इसकी बात तीन खानों का वर्णन आता है। तो इस श्लोक के बाद ये आता है, आहारास्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपः तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणो। तो यज्ञ और तप का फिर दोबारा वर्णन आएगा ऐसे यहां कहा गया है। तो ये दो श्लोक बीच में पांच और छह ऐसे आए हैं तप्यंत, ये तप का, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है इसका कुछ भाव क्या है क्यों है कि ये आसुरी भाव की तपस्या है ये वर्णन करके। तो अब कौन सा पहले आहार की बात कर रहे हैं, तो सत्वगुण के जो लोग हैं जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं उनका क्या पसंदीदा आहार है, उसका फायदा क्या है, उसके वर्णन अभी है। आयुः सत्वा बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, ये चार चीज ये हो गए फायदे। पहले फायदे क्या है, आयु, आयु मतलब उम्र, सत्व बल आरोग्य, सत्व मतलब उसका अस्तित्व या वजूद, बल शक्ति, आरोग्य बीमारी से मुक्ति, सुख सुख प्रीति, प्रीति विवर्धना जो जिसका प्रीत बढ़ाता है। तो ये फायदे हैं किस चीज के, ये कुछ आहार लेने के, कौन से आहार, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकः प्रियाः। सत्वगुण के लोग जो होते हैं उनको ये आहार प्रिय होते हैं, कौन से, जो उम्र बढ़ाते हैं, बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाले हैं वो आहार कौन से हैं, रस्या रसमय, जैसे फल हैं सारे जिनमें रस है, रस्या स्निग्धा बड़ी सुगंध वाले, सुगंधित, सुगंध को देखा है कि बड़ी सुगंधित जो चीजें हैं, स्थिर स्थिर जो खराब नहीं हो, जैसे घी आदि ये खराब नहीं होता है महीने पड़ा होता है, तो ऐसा आहार जो खराब नहीं होता है स्थिर, और हृदय जो दिल को पसंद आए हृदय। तो ये है कौन से पर, जो सत्वगुण के लोग होते हैं वो उनको कौन से भोजन पसंद होते हैं, जूसी रस वाले, फेटी बड़े जो जो चिकने और सुंदर और दिल को देखने में अच्छे लगते हैं। अब क्या है इसका पूरा वर्णन, अब रजोगुण के लोग हैं उनका कौन से भोजन पसंद आएगा, कट्व अम्ल लावण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन। अब ये दो लाइनें बता रहे हैं कि उसका स्वाद कैसा है, कट्व कट्व मतलब कड़वा, अम्ल खट्टा, लवणा बहुत नमकीन, अति उष्ण बहुत गर्म, अति ज्यादा उष्ण गर्म, तीक्ष्ण तीखा, रूक्ष रूखा, विदाहिनः, विदाहिनः का अर्थ है जलने वाला जो जला दे। आहारा राजस्येष्टा, आहारा का मतलब आहार, राजस्य मतलब राजसी, इष्ट मतलब उनको पसंद है, राजसी लोगों को ये आहार पसंद है, तो इनमें से नुकसान क्या होता है? इससे जैसे सतोगुण के आहार से बल बढ़ता है, आरोग्य आती है, तो इससे क्या होता है? दुख शोकामय प्रदाह। दुख का मतलब दुख, शोक मतलब चिंता, और आमय मतलब बीमारी। दुख चिंता और बीमारी देने वाले ये हैं। हरी वरी एंड करी अवॉइड, बोलते थे कहते हरी वरी एंड करी अवॉइड थ्री, ये आपको बहुत टेंशन देने वाले। हरी वरी करी मतलब जो तीन चीजें हैं ना, जल्दी भागना, हरी मतलब बहुत तेजी से भागना, कभी करी तीजी है, ये चीजें जो तेज चीजों की बनी हुई है, करी और तरी जिसको आप कुछ भी कहो, जो फ्री में मिलती है, ग्रेवी फ्री में होती है ना। तो अब ये कटु अम्ल लवण अति उष्ण, इसको कैसे क्या समझेंगे भैया? बहुत तीखा, खट्टा, उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष्ण, विदाहिन, जलन करने वाला, इसमें काफी ऐसे भोजन आते हैं जो रजोगुण को प्रहार। और फिर यात यामं गत रसम पूति पर्युष्टम च यत उचिष्टम अपि चामेधयम् भोजनम तामस प्रियम। यात यामम, याम कहते हैं जो डेढ़ घंटा तीन घंटे, अष्ट याम लीला कहते हैं, भगवान की लीला को कहते हैं अष्ट याम। याम कहते हैं तीन घंटे को, दिन रात में 24 घंटे होते हैं, तो याम मतलब तीन घंटे। यात यामम जो तीन घंटे गुजर चुके हैं जिसको बनाए हुए को, तीन घंटे जिस भोजन को बनाए को गुजर चुके हैं, वो भोजन तमोगुण के लोगों को पसंद है। अब जितने फूड स्टोर है उसमें तीन घंटे नहीं, तीन हफ्ते क्या, तीन महीने, कब का बना हुआ है कुछ पता नहीं है। वो आजकल जितना फास्ट फूड है सब तमोगुण की राजधानी है। हम कहीं बात कर रहे थे, कहां बात की, तो भाई भगवान मक्खन को चुराते थे, तो मक्खन को चुराते थे तो किसी घर में चोरी करने आएंगे ना मक्खन को चुराने के लिए, तो जो कोई मक्खन बनाएगा तब आएंगे ना, अभी तो कोई घर में मक्खन बनाता नहीं तो आएंगे कहां से, तो मक्खन बनाए तब आएंगे। तो मक्खन बनाना आता ही नहीं है बहुत से लोगों को, मक्खन बनाता कैसे पता नहीं। बच्चों से पूछा हमने दुबई में कि भैया बच्चे मक्खन कैसे बनता है, बोला ऐसे दबा के निकालना पड़ता है। कहां से, बोला वो पैकेट से। उनको मालूम है पैकेट में मक्खन बनता है, अरे बोला दूध, बोला दूध थैली से आता है, वो फुल क्रीम हाफ क्रीम, वो समझता है गाय से निकलता ही ऐसे होगा हाफ क्रीम फुल क्रीम अलग अंदर से, तो उसको मालूम नहीं, कभी देखा नहीं बेचारा ने, तो माखन बनता कैसे है ये मालूम नहीं है। तो भगवान तो माखन ताजा जो उसी दिन का होता था उसी को दूसरे दिन का बंदर को देते थे, दूसरे दिन का नहीं खाते थे, उसी दिन का ताजा माखन। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होता है सुबह माखन बनता है, उसकी पहचान होती है वो कैसा होता है, दूसरे दिन वाला माखन के अंदर छाछ थोड़ी रह जाती है, खट्टा होता है, वो खाने का मन नहीं करता है। तो ये कौन से दिन का हम मक्खन खाते हैं ये मालूम है, उसके ऊपर डेट सिर्फ होती है, वो डेट पढ़ते हैं तो कुछ मालूम नहीं होता है कितने महीने गुजर चुके हैं। तो या यत यामम गत रसम, और जिसके अंदर से स्वाद चला गया, बाकी उसमें स्वाद थोड़ी, आप आम की सीजन में आम खाइए और अभी भी आम स्टोर का मिलेगा खाइए, दोनों में फर्क है कि नहीं। मैं तो गत रसम उसका रस निकल गया, उसको सिर्फ बचा के रखा हुआ है, वो स्टोर में है, बचा के रखने से उसके अंदर वो दूसरा शब्द क्या है, गत रसम है ना, क्या है, या तो यामम गत रसम, उसके अंदर से रस निकल गया, गत निकल गया रस, उसके अंदर स्वाद चला गया था, स्वाद नहीं होता उन चीजों में, स्वाद होता है क्या स्टोर वाली चीज में, स्वाद होता है। वो कृष्ण लीला में आता है ताल वन, ताल वन एक वन है, ताल वन है उसको, उसमें ताल के बड़े वृक्ष हुआ करते थे, ताल का एक फल होता है, ताल का फल खाया कभी नहीं, ये साउथ इंडिया में मिलता है बहुत, रास्ते में जाएंगे वो खजूर जैसा ही होता है, खजूर जैसा उसका वृक्ष होता है, नारियल और खजूर जैसा ही होता है, ताल खजूर नारियल वृक्ष एक जैसे लंबे होते हैं, लेकिन उसके इतना बड़ा होता तो खोलेंगे अंदर से बहुत बड़ा मीठा अच्छा होता है ताल पक्का हुआ। और भगवान बलराम जी के रथ के ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह होता है, कृष्ण के रथ के ऊपर गरुड़ का चिन्ह है, गरुड़ चिन्ह होता है भगवान के रथ के ऊपर, तो बलराम जी के रथ के ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह है। और अर्जुन का जैसे हनुमान चिन्ह है, अर्जुन का एक नाम है कपि ध्वज, जिसकी ध्वजा के ऊपर हनुमान का चिन्ह है कपि का। तो ताल वन में एक असुर रहता था, धेनु का असुर, धेनु के गधे को, गधे के रूप में एक असुर रहता था, और छोटे छोटे उसके भाई छोटे गधे बहुत सारे थे। पक्का हुआ फल गिरता था, उनकी खुशबू आती थी, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं देता था धेनु का असुर। ग्वाल बाल कहते थे, अरे कन्हैया बहुत अच्छा, देखो फल कितना सुंदर खुशबू आ रही है, उसमें स्निग्ध है, रसिया है, खाना चाहिए। वो असुर नहीं है, खाने देता है। तो भगवान कृष्ण बलराम गए उधर, धेनु का असुर को मारा और फल को आजाद किया कि आप सब खाओ जिसको चाहिए। तो जब सीजन में अच्छा रस वाला फल आता है, तब धेनु का असुर जो है उसको सब कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। जब रसमय खाने वाला होता है और फिर उसको 10 गुनी ज्यादा कीमत के ऊपर बेरस करके तमोगुणी प्रवृत्ति के लोगों के लिए वो बाहर बाहर मार्केट में आता है। जब खाना था तब मिला नहीं, और जब अब आया है तो पैसे ले नहीं सकते। अब तो लेने के लिए पैसे हैं, और जितना उतना पैसा तो बहुत ज्यादा 10 गुना भाव पड़ जाता है। भगवान ने सीजन में हर एक फल को बनाया है, तो उसी सीजन में खाओ ना। इसलिए कहते कभी भगवान की पूजा में कहते ऋतु फलानी, जो इस ऋतु का, इस सीजन का फल है वो भगवान अर्पण करते हैं। कोल्ड स्टेज फलानी नहीं लिखा है कहीं भी, ऋतु फलानी वहां शब्द लिखा हुआ है। तो ये बड़ा आश्चर्य है, यत यामम गत रसम, 3 घंटे गुजर जाए वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तमोगुण का होता है, सिर्फ प्रसाद को छोड़ के, या कोई स्थिर हो। स्थिर इसी शब्द पहले कह दिया, स्थिर का मतलब मिठाइयां जो होती है पक्की पुख्ती, जो खराब नहीं होने, और उसको स्थिर कहते हैं, जो खराब नहीं होने वाला। क्योंकि इसके बाद ये 2 शब्दों के पास तीसरा शब्द भी है, पूती, जो गंध मारने लगे, बदबू उसमें से आने लगे, तो इसके बाद वो, उसके बाद है प्यूट्रीफाइड, जो बहुत डीकम्पोज हो जाए। तो ये जो 2 चीजें इसके पीछे ये भी हैं। तो यत यामम गत रसम पूति पर्युष्टम च, मतलब जो पूति का मतलब है बेड स्मेलिंग, जिसमें से बदबू आने लगे, और पर्युष्टम मतलब डीकम्पोज, जिसको जो बिगड़ जाए। और उसके बाद है उचिष्टम अपि, उचिष्टम, अब ये भी बड़ा अजीब शब्द है, उचिष्टम का मतलब किसी का जूठा। हरे कृष्ण, एक खाने का नया तरीका अंग्रेज हमारे पास छोड़ के गया है, क्योंकि काम वाले आदमी नहीं होते थे उसके पास। हमारे पास काम वाले आदमी इतने ज्यादा होते थे, किसी को खिलाना हमारा धर्म होता था, भाई सेवा है, अतिथि आया है, मेहमान आया है, उसको हाथ से खिलाना चाहिए। तो ऐसे करके प्रेम से उसको जितना चाहिए उतना देते थे, या कहीं थोड़ा और ले लो भाई प्रेम से, थोड़ा और ले लो भाई प्रेम से। अब वो आदमी भी नहीं है, खिलाने का भाव भी नहीं है, तो क्या कर दिया, लगा के रख दिया कि भैया जिसको जो चाहे जाके खाओ। उसको क्या कहते हैं, बुफे, हम कहते हैं बफेलो। तो भैंस की तरह जाएगा उधर, इधर मुंह मारेगा, फिर इधर सींग मारेगा, क्यों काम करेगा, कोई बोलने वाला तो है नहीं उसमें। हम उचिष्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, उसमें होता क्या है, जो आदमी जिस हाथ से खाता है ना, खाया वही हाथ जाएगा उसी चमचे को पकड़ेगा और फिर डालेगा। वो बुफे में हम पहले तो दूर से नमस्कार करते हैं, बहुत मजबूरी होती है तो किसी कोने में किसी को बोलते हैं इसमें डाल के आ जा, दोबारा नहीं जाना है उधर। तो उचिष्टम, वो तकरीबन वो खाते हुए उसी में हाथ जाएगा, वो हाथ उसमें डला हुआ है, फिर उसी चम्मच में हाथ है, फिर दूसरा आदमी उसी चम्मच में हाथ है, कहीं कहीं दूसरा आदमी खड़ा होता है ऊपर डाल के देने वाला। उस आदमी के भी कपड़े उसी वक्त कहीं से लाया है, उसके कपड़े उतारा तो उसने 10 दिन से स्नान नहीं किया होता है। ये सब बाहर से चमकते हुए, ये सब पूती यामम है, एक याम वो उसको आप वो उसकी नेकटा छोड़ के बाद देखना क्या है, वो सब दिखता है ऐसे बहुत सुंदर दिखता है, बाहर सुंदर सुंदर देखा, सूरत सुंदर देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। कैसा ये माल होता है, कैसे पकाते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, कैसे इसका बहुत बड़ी बड़ी जो डेकोरेशन इतनी बड़ी सुंदर होती है कि हमको अच्छा चमकी लगता है, लेकिन कब का कहां का कब का बना हुआ कुछ मालूम नहीं। तो ये उचिष्ट हो जाता है। और वैसे भी रसोईया तो मेरे ख्याल में आधे में से खा के देखता है कि ठीक है कि नहीं है, उसका तो सभी उचिष्ट खाते ही है प्राय, देखा है कि नहीं देखा है रसोईयों को कैसे खाते हैं वो भी मालूम नहीं है, खाते हैं बीड़ी पीते हुए सब रसोईया बनाते रहते हैं रोटी के उसके ऊपर तमाकू निकाल के उसके बाद तमाकू की मालिश करा जाते, देखा नहीं हमने। एक हमारा मित्र था, वो भाषा के भाषा का विज्ञानी था, कहीं गांव में जाके भाषा सीख रहा था, तो उस गांव में बेचारा गया और कुछ खाने को नहीं थी, और सारे वो लोग जो है जत थे, जत वो कच्छ में, वो नाश काली नाश का खाते थे माता जी, वो नाश का खाती फिर रोटी लगे देख रहा है रोटी के ऊपर नाश का लगा रही है, फिर अब नहीं खाए तो मरता है और खाए तो देख रहा है खाऊं कैसे मैं, बेचारा बीमार हो गया महीने के बाद वहां से आया नहीं खा पाया। तो ये तो रसोईया क्या कैसे खाते हैं क्या भगत, ये उचिष्ट हो गया सही माना में, ये कि नहीं वो चीज नहीं मिलती। इसलिए माँ के हाथ का खाया हुआ जो जैसे खिलाती है उसमें जो भाव होता है, जो पकाने वाला है ना उसकी भावना का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे को माँ अपने हाथ से पका के खिलाती है वो, और या कोई रखा हुआ नौकर बना के खिला, दोनों में खिला, दोनों के खाने खाने के बाद बच्चे की भावना में अंतर होता है। तो कौन बनाता है, किस भावना से बनाता है, किसके लिए बनाता है, उसका बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहां भोजन वो कौन सा, यत यामम गत संपूति परिष्टम च यत उचिष्टम अपि चामेधयम, चामेधयम ये मेधयम का अर्थ है अमेधयम, जिसको हाथ लगाना ही अच्छा नहीं लगता है, हाथ लगाने में भी जिसको कराहत आती है, ऐसी चीजें भी कुछ होती हैं। जैसे जैसे अपने समाज में अब कहीं बिच्छू का आचार हो तो कोई हाथ लगाएगा उसको, ये अमेधयम हो गया। मेधयम का मतलब बुद्धि है, अमेधयम मतलब जिसको बुद्धि स्वीकार ही नहीं करे। हाँ भाई बिच्छू का कई लोग अपने कभी को बच्चे टीवी में अलग ले देखता हूं, कहीं टीवी खुली हुई है कुछ लोग ऐसे जा रहा है कोई काकरोच उसको पकड़ के ऐसे का ऐसे मुंह में डालते हैं देखते हैं, अरे उसको देखने से अमेध्य देखना ही की इच्छा नहीं होती है, खाना तो दूर की बात रही, देखने की इच्छा नहीं है। देखा है आपने ऐसे खाते हुए लोगों कैसे कितनी हालत कैसी होती है। तो ये अमेध्यम अनटचेबल, टचेबल क्या अन बुद्धि में ही जो बात नहीं आती है, ऐसे भी लोग चीजें खाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। अभी आजकल नहीं आती है, किस जमाने में वो फसल के ऊपर माकड़ आता था, माकड़ क्या बोलते हैं उसको, टिड्डी टिड्डी टिड्डा बोलते हैं, और लोकस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का होता था, लोकस लोकस वो मकड़ को लोकस कहते हैं, हाँ लोकस, और मकड़ को वो मकड़ी मारने के लिए होता था कि वो सारा अनाज खा जाते थे, वो खास करके राजस्थान में बेचारी बरसात एक बार पड़ती थी और कभी माकड़ आया तो रात रात में सब खा जाता था। और हमने देखा लोग माकड़ को खाते थे, वो एक पूरी कम्युनिटी हमारे पास हमने देखी हो, वो रात को बस जाके पेड़ के ऊपर माकड़ बैठते उसके ऊपर कपड़ा डाल के रात को सुबह उसको माकड़ फ्राई उनके हाथ में होता था। तो ये अमेजियम है, देखा हमने उनको गांव के लोगों को ऐसे करते हुए देखा। हरे कृष्णा, चाइना के इधर के लोगों की बात कर रहा हूं, अभी भी बिहार में एक जगह में गया था, बोला चूहे ये चूहे बच्चे खाते हैं, जाके चूहे पकड़ के खाते। माकड़ तो मैंने बहुत देखे राजस्थान में लोगों को खाते हुए, नीचे लोग जो थे। भोजनम तामस प्रियम, ये तमोगुण के लोगों के प्रिय भोजन है। अब तीन प्रकार के भोजनों का वर्णन आ गया, कौन सा सत्वगुण का भोजन है जो लोग किस चीज को पसंद करना चाहिए, ये च्वाइस आपकी। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये खाओ वो मत खाओ, भगवान एक ऑप्शन हमको दे दिया है कि यह सत्वगुण का, यह रजोगुण का, यह तमोगुण का, अब आपको जो अच्छा लगे वो खाओ, जो आपको ठीक लगे वो खाओ, अब निश्चय आप कर लो, निर्णय आप कर लो। सत्वगुण में क्या है, आयु बढ़ाएगा, बुद्धि बढ़ाएगा, बल बढ़ाएगा, आरोग्य करेगा, सुख देगा, उसको खाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। कैसा होता है? रस वाला होता है, फल सारे रस वाले हैं, स्निग्ध होता है, दूध है, दही है, स्निग्ध है, रस या स्निग्धा इस तरह। और जो इस्त्र बहुत समय तक खराब नहीं होता है, सुगंधित होता है बहुत, सब्जियां हैं, फल हैं, ये बहुत सात्विक भोजन में आती हैं। और रजोगुण और तमोगुण के भोजन का वर्णन करने की जरूरत है नहीं, लिखा है, जिसको जो अच्छा लगे वो पसंद करके खाए। लेकिन इसके बाद अपन पहुंच गए यज्ञ के ऊपर, जो आज का श्लोक असल में 11 से करना था ना, आज
12 से करना।
हाँ, तो 11 यज्ञ में आ गए। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब यज्ञ की बात आती है, तो यज्ञ पहले तो यज्ञ है क्या ये समझना चाहिए, फिर सत्व रजो तमोगुण की बात करें। यज्ञ जो प्राय प्रचलित भाषा में यज्ञ का अर्थ होता है कि आग जलानी है, पंडित जी को बुलाना है, और घी और जव और तिल की आहुति डालनी है कुछ मंत्र पढ़ के, इसको यज्ञ, पर्यावाचिक भाषा में इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कुंड बनेगा, अथवा यज्ञ का कुंड बना हुआ मिलेगा, और यज्ञ की सामग्री होगी और समिधा लकड़ियां होंगी, घी होगा, और एक होता होगा जो यज्ञ करेगा, ब्राह्मण आएगा वो यज्ञ करेगा, अथवा खुद, इसको यज्ञ कहते हैं। अब यहां भगवत गीता में यज्ञ का जो है वो रूप थोड़ा अलग है, क्योंकि भगवत गीता ने स्वाध्याय को भी यज्ञ कहा है, प्राणायाम को भी यज्ञ कहा है, और जो है 12 यज्ञ है चौथे अध्याय में, उन सबको यज्ञ कहा है। तो यज्ञ का मतलब है कुर्बानी, बलिदान, त्याग, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करना, किसी के लिए कुछ करना। और एक यज्ञ तो भगवान ने 10वें अध्याय में कह दिया, यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मैं, मेरा स्वरूप जप राम नाम का यज्ञ है, मतलब भगवान के नाम का जप करना महान यज्ञ है अपने आप में। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ कह दिया, भगवान का नाम साथ गाना भी यज्ञ है। तो यज्ञ के परिभाषा ये होनी चाहिए भगवद गीता के दृष्टि से, त्याग, जप करेंगे तो समय का त्याग करना पड़ेगा, त्याग यज्ञ, सेक्रीफाइस, वैसे अंग्रेजी में यज्ञ को सेक्रीफाइस कहते हैं, तो सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी, बलिदान, तो बलिदान कुर्बानी मतलब कुछ चीज को त्याग करना है, तो यह परिभाषा है। अब कोई यज्ञ करना है, कोई भी यज्ञ करना है, आप जप यज्ञ ले लो, अभी आप सिंपल के लिए जप यज्ञ, भाई भगवान के नाम का जप करना है, तो जप यज्ञ में हमारे में क्या होना चाहिए, विधि दिष्टो या इज्जते, जो विधि जिसकी बताई गई है, दिष्टों का मतलब दिशा, जो विधि और दिशा दी गई है उसके अनुसार करना चाहिए, इज्जते मतलब पूजा करनी चाहिए विधि के अनुसार। तो विधि क्या है जप जप करने की, भाई विधि ये है कि एक माला होनी चाहिए और माला झोली में होनी चाहिए, ये उंगली नहीं लगनी चाहिए, तो ये विधि है, ये विधि दिष्ट है कि इसकी विधि बताई हुई है। अगर मैं कहता नहीं नहीं मेरे को ऐसे ही करना है तो करो, लेकिन ये विधि दिष्ट नहीं हुआ, विधि दिष्ट ये है भाई, सुबह सुबह जो है रात को यज्ञ नहीं करना है समझो, तो ये विधि दिष्ट नहीं हुआ, तो विधि दिष्ट। अब फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा नहीं है, भाई मैं जब क्यों कर रहा हूं, कोई मुझे फल नहीं चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य कर्म है। ये मां रोटी बच्चे को क्यों खिलाती, कोई फलाकांक्षी नहीं है कि बच्चे के लिए रोटी इसलिए थोड़ी करती हूं मैं कि मुझे बच्चे से कुछ मिलना है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बच्चे को रोज रोटी खिलानी है मेरे को, मैं कपड़े धो के रखने हैं, बिस्तर ठीक करना है, ये मेरा कर्तव्य रोज का कर्म है। तो यज्ञ ऐसे जप करना मेरा रोज का नित्य कर्म है, जैसे रोटी खाना रोज का कर्म है मेरा, ऐसे भगवान का जप करना मेरा नित्य कर्म है, मेरे को करना चाहिए। तो फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा नहीं है, न फल चाहिए। विधि बताइए, ऐसे ही करेगा। यष्टम यष्टव्यम एवेति मनः, यष्टव्यम यष्टव्यम, बहुत अच्छी बातें हैं। समाधाय, मन को एकाग्र करके करना चाहिए। समाधाय मना, मन को समाधाय मतलब समाधान। कभी कहते यज्ञ में कभी आप बैठेंगे तो पंडित जी एक बोलता है, सावधान साधु सावधान, अपने मन को एकाग्र करो, अब आहुति का मंत्र पढ़ रहा हूं। तो मन को एकाग्र करके और किसी भी हालत में मुझे ये करना है, ये पहला काम है मेरा। यष्टव्यम का मतलब, यष्टव्यम निश्चित रूप से मुझे ये करना है और एकाग्र मन से ये करना है, और कुछ चाहिए नहीं, ये मेरा कर्म है, मुझे करना है जरूरी। जैसे इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, पर इसको समझना चाहिए भाई, कुछ ऐसी क्रियाएं दिन में है जो हम को करनी ही है, उसके लिए हमको किसी का इंतजार करना पूछना नहीं, उसका नेम है, उसका करना है भाई, उठ के बुर्श करना है, ये नेम है, ये किसी का पूछना नहीं है, तो बुर्श उठ के बुर्श करना ही है, स्नान करना है, ये जरूर करने हैं। अब ये किसी को कहेंगे भाई बुर्श करो उठ के रोज, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। नया बच्चा है तो कोई बात नहीं सिखाना, लेकिन किसी बड़े आदमी को कहना कि तुमने अपना बुर्श साथ ले लिया है, तो ये जरा आश्चर्य लगेगा। तो ये चीजें ऐसी है कि साथ हमको रखनी ही है। तो ये यष्टव्यम का मतलब है किसी भी हालत में ये चीज हमको रोज करनी। तो ये सत्वगुण का यज्ञ कहलाएगा, ये सत्वगुण की कुर्बानी है, ये सत्वगुण का बलिदान है कि करना है बलिदान, मन को एकाग्र करके बड़े ध्यान पूर्वक करना है, जान छाने के लिए नहीं करना है, अरे भाई फंस गए या करना नहीं, करना है नित नेम से करना है, बिना किसी इच्छा और कांक्षा के। बच्चे को सुबह स्कूल भेजने के लिए आपको मालूम है स्कूल खुली है तो स्कूल भेजना है बच्चे को, तो उसके लिए आपको सारी विधि क्या है, उसका किताब कहाँ है, बस्ता कहाँ है, उसका टिफिन कहाँ है, उसकी गाड़ी कहाँ आएगी, कितने बजे आएगी, आपके दिमाग में हर एक चीज कितनी पर्टिकुलर होती है। तो ऐसे पर्टिकुलरली उस विधा यज्ञ के लिए भी हमारे मन में ऐसी सावधानी होनी चाहिए। तो ऐसा यज्ञ सत्वगुण का यज्ञ है। तो सत्वगुण के यज्ञ का फल ये होगा कि आदमी की चेतना या भावना ऊपर उठेगी। छोटे दुनिया के फल नहीं, लेकिन भगवान की प्राप्ति इसका बहुत बड़ा फल है। जो फल बताया नहीं गया है, लेकिन सत्वगुण का फल वो आगे बढ़ने वाला है। तो यज्ञ कौन सा? अफलाकांक्षी, कोई फल की आकांक्षा नहीं हो, विधि जिसमें बताई हो उसके अनुसार हो, और मन को एकाग्र करके अवश्य कर्तव्य समझ के किया जाए, तो वो सत्वगुण का है। अब रजोगुण का कौन सा है? अभिसंधाय तो फलम दंभा अर्थम अपि चैव यत् इज्यते भर्त श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम अभिसंता। अभिसंधाय तू फलम, पहले पहले इसका फल क्या मिलेगा भाई? अभिसंधाय, पहले ये अनुसंधान कर देना कि फल क्या है इसका भाई। तो यज्ञ करने से पहले भाई इस फल के लिए मुझे यज्ञ में क्यों कर रहा हूं, मुझे ये काम चाहिए, इस काम के लिए यज्ञ कर रहा हूं। तो कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ करना, या दंभार्थम। कभी कभी लोग कहते हैं अरे भाई हमने 108 कुंड बनाए थे, 108 काशी से पंडित मना के यज्ञ कराया था, तुम कहां थे? बोला मैं तो अमेरिका गया था बिजनेस के लिए, यज्ञ पीछे हो रहा था, लेकिन कराया मैंने था। तो उसके कहने का मतलब दंभार्थम, दुनिया को मालूम हो कि 108 कुंड वाला मैंने यज्ञ कराया था, आप कहां थे मालूम नहीं। तो ऐसे होता है कि झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे होता है, कहां थे हम, किसी के घर में गणेश की चतुर्दशी का उत्सव था, उसके घर में गए सत्संग करके, हम वापस गए तब घर का मालिक आ रहा था अंदर, काम वाला दो पार्टी आई थी उनसे बात करने का, तेरे घर में भगवान आया है तेरे को ये पार्टी नजर नहीं आई? तो घर में बुलाया है भगवान को, मेहमान को, और खुद पार्टी से बात कर रहा था। तो वो बड़ा उत्सव, इतना बड़ा खर्चा किया, इतना बड़ा गणेश बनाया था, कोई सात गणेश इधर थे सात इधर थे, और नृत्य करते हुए संकीर्तन गणेश बनाए थे, और बड़ा अच्छा इधर से शंकर भगवान इधर पार्वती, एक आंख उसकी एक आंख उसकी, दोनों की मिला के बीच में गणेश बनाया था, बड़ा अजीब सा बनाया था, इतना बड़ा खैर। लेकिन आदमी मालिक वहां नहीं था, दम्भार्थम, दम्भार्थम हुआ। तो ये करते तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसके पीछे आशा क्या है, अभिलाषा क्या है? लोग मेरे पास आएंगे देखेंगे, और बड़ा आश्चर्य लगा। अब ये प्रसाद, क्योंकि हम भक्त लोग गए थे, कीर्तन किया था, इसलिए प्रसाद तो सात्विक बन के आया, लेकिन जहां से सर्विस हो रही थी गणपति, तो यहां विराजमान थे, यहां जहां सर्विस हो रही थी वहां वहां मल्टी कलर बार थी, बार की टेबल से प्रसाद सर्व हो रहा था। ओ, बहुत वेराइटी की बोतलें, जैसे अस्पताल के डॉक्टर होती है ऐसी लगी हुई थी। हम देख रहे थे, हमने तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देख रहे थे कि ये धर्म जो है उसको वो मजाक में आ जाता है, मजाक में आ जाता है, धर्म का मजाक हो जाता है ये, धर्म का धर्म की रीति इसमें विधि दृष्टा नहीं है, विधि उसमें ये नहीं है, विधि तो कम से कम विधि का तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये चीजें आश्चर्य लगता था, लेकिन फिर भी प्रचार करना है हमको, जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बातें बता रही हैं कि ये यज्ञ जो कर रहा है ये बहुत बड़ा यज्ञ था, वहां भगवान का कथा हुआ, कीर्तन हुआ, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके ये रजोगुण का था, ये रजोगुण का था। और फिर तमोगुण का कौन सा यज्ञ है? विधिहीनम आश्रिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धावरहितम यज्ञम तामस परिचक्षते। विधिहीनम, कोई विधि नहीं, असृष्टानम, कोई शिष्टाचार नहीं। हाँ, वैसे नहीं, यहां लिखा है असृष्ट अनम, असृष्ट अनम विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, तो असृष्ट अनम मतलब न विधि है और न ही कुछ अन्न का वितरण है। मंत्रहीनम, और कोई मंत्र भी ठीक नहीं पढ़ा है, और न ही दक्षिणा भी किसी को दी है, श्रद्धा भी कोई नहीं थी। ऐसा यज्ञ तमोगुणी प्रवृत्ति के लोगों को बहुत पसंद होता है। इसके बाद बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसके बाद तीन तपस्याओं का भगवान वर्णन करेंगे। शरीर की तपस्या क्या है, मन की और वाणी की तपस्या क्या है, शरीर मन और वाणी की तपस्या, ये बहुत महत्वपूर्ण तीन श्लोक है। अपना टाइम तो आज का पूरा हो रहा है यहां। तो ऐसा यज्ञ जिसमें, और प्राय मैं ऐसे कहने में थोड़ा संकोच लगता है, लेकिन जितने प्राय मंत्र पढ़ते हुए हम यज्ञ में देखते हैं, सवाय कोई पंडित वाकई पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो सारे मंत्र ठीक नहीं होते, उनका उच्चारण सही नहीं होता है, मंत्र ही नम ही होते, मंत्र ठीक नहीं होता है, प्राय हमने देखा है। कोई बड़े पंडित हैं काशी से पढ़े हुए हैं, वो यज्ञ कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ का नाम होता है शांति के, विश्व शांति के लिए यज्ञ होता है। विश्व शांति के यज्ञ में दक्षिणा जब देने की बारी होती है और पैसे पूरे नहीं होते हैं तो अशांति यज्ञ करने वाले को पहली होती है और वही झगड़ा होता है। दुनिया की शांति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, विश्व शांति के लिए, और यज्ञ के अंत में जो कराने वाले हैं वो हिसाब किताब में, और करने वाला दक्षिणा के ऊपर जो झगड़ा करता है, अशांति वहां से शुरू होती है, तो संसार को कहां से शांति मिलेगी? ये बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिलता है, आश्चर्य। तो भागवत के पहले स्कंद में लिखा है कि दीर्घ काल तक यज्ञ करने का अनुष्ठान करके ऋषि बैठे थे नैम शरण में, उन्होंने कहा ये यज्ञ के धुएं से तो अब हमारे हाथ पांव काले होने लगे हैं, अब आप बैठ के कुछ और सुनाइए भागवत जो कलयुग का उद्धार हो। तो प्रायः ये यज्ञ जो हैं, ऐसे नहीं, यज्ञ में पहले देवता आया करते थे, जिस जीविका के लिए यज्ञ किया जाता था वो देवता आता था और आके अपनी आशीर्वाद दिया करता था, लेकिन अब देवता तो आते नहीं, उन्होंने आना छोड़ दिया। क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिया आना? अच्छा, अरे कोई आया होगा तो उसके सारे आभूषण लोगों ने उतार लिए, जरा वापस गया था घर वालों ने ही नहीं पहचाना। अब देवता आएगा तो उसके पास तो देवता जैसा श्रृंगार होगा ना, सुंदर, उसको देख के तो लपक पड़े किसी, वो उसको देवता तो क्या, इस दुनिया का कोई नेता आता है तो भी उसके पास कितने लोग लपकते, उसको बचाने का कितना प्रयास करना पड़ता है। हाँ, कोई नेता नेत्री अभिनेता अभिनेत्री आती है तो उसको संभालना कितना मुश्किल होता है, इतनी पुलिस लगती है ऊपर पीछे लगती है तब बचता है। तो देवता आएगा तो फिर तो इतना हमारे पास है ही नहीं उसकी सुरक्षा का प्रबंध, तो आगे करेगा कि हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जाएगा कहां से यहां से वापस। तो इसलिए उन्होंने आना ही बंद कर दिया बेचारों ने, देखा कि ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो अभी यज्ञ एक ही बच गया है, भगवान के नाम का कीर्तन करना बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ है। लेकिन ये श्लोक तीनों बहुत अच्छे हैं, अभी जो तीनों है, देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम, ये जो है ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक शरीर का तप कहलाता है, हर एक को जिसको शरीर है उसको ये तपस्या करनी चाहिए। यहां अपन 13 श्लोक पूरे करके कथा को यह समाप्त करते हैं आज की भगवद गीता को। बाकी कुछ श्लोक बचे हैं, 3 ये श्लोक हैं और उसके बाद बहुत अच्छा हिस्सा है, इस लास्ट पार्ट इसका बहुत सुंदर है। कितने हैं, 14 हो गए ना, 28 है, कितने इसमें, हाँ 28 है ना, 27, और 14 बाकी बचे। 14 में भी अब दान की बार आएगी, दान के बाद यहां से फिर जो 23 से लेकर 28 तक ये 5 श्लोक बहुत अच्छे हैं। वैसे सारा ही अच्छा है लेकिन इसको समझना चाहिए। तब आएगा भैया, तप फिर 3 बार दोबारा फिर तप की वर्णन भगवान ने किया है। तो हरे कृष्ण, धन्यवाद, कोई प्रश्न है तो पूछिए। वैसे श्रद्धा शब्द है विश्वास का, ऐसे महाप्रभु ने ऐसे लिखा है, और प्रभुपाद ने श्रद्धा इनटू ब्रैकेट फेथ लिखा है। दोनों में कोई सूक्ष्म अंतर जरूर होगा लेकिन दोनों शब्द प्रायः डिस्कशन में समान ही आते हैं, श्रद्धा और विश्वास। इसका मतलब इसकी श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, जैसे चैतन्य चरित में दोनों शब्दों में कोई भेद नहीं लिखा है, भेद नहीं उसमें बताया है। वैसे इसका शास्त्रीय भाषा में क्या अंतर है इसको देखना चाहिए। किसी को इस विषय में कोई जानकारी, श्रद्धा और विश्वास के दोनों में अंतर के विषय में किसी का कोई राय? हमारे अपने मन से इंटरप्रिटेशन, हमारे अपने मन के अंदाज से हम श्रद्धा और विश्वास में अंतर कर रहे हैं, लेकिन विश्वास श्रद्धा तो बिगिनिंग है भक्ति की, आदव श्रद्धा है, तो श्रद्धा से आगे ऊपर जाना है। विश्वास शब्दों का क्या दोनों के अंदर फाइन डिफरेंस है इस वक्त नहीं दिमाग में आ रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत फाइन डिफरेंस होना चाहिए। विश्वास किया जाता है, श्रद्धा हो जाती है, ऐसे लगता है विश्वास तो करना पड़ता है, श्रद्धा हो जाती है। तो विश्वास तो किस चीज, भाई तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात पे विश्वास कर, लेकिन श्रद्धा जो अपने आप कही, मेरी बहुत श्रद्धा आ गई, ये बात मुझे बहुत अच्छी है, मतलब किस चीज के ऊपर श्रद्धा आना, तो ऐसे है कोई एक, एक, एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कोई अंतर होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। विश्वास
जय के प्रभु विजय हो गया, जय के प्रभु ईव लग गया।
विश्वास, और जैसे हम किसी डॉक्टर से कोई दवाई लेते हैं, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, हमारे डॉक्टर में श्रद्धा
नहीं, उसी श्रद्धा है तब उस डॉक्टर के पास गए ना, तो ये भी एक मतलब बहुत इंटरचेंज है। फाइन डिफरेंस क्या है, मैं इस वक्त मेरे को क्लियर दिमाग में दोनों में बिल्कुल कोई है तो ऐसा ना, हम वैसे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं विश्वास। प्रभुपाद ने लिखा है श्रद्धा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेथ, फेथ उसी का ट्रांसलेशन फेथ है। नहीं, इसमें श्रद्धा शब्द के वहां लिखा है फेथ, इनटू ब्रैकेट फेथ ही लिखा है तो दोनों इंटरचेंजेबल शब्द, लेकिन कोई फाइन डिफरेंस जरूर, दो शब्द अगर हैं तो उसके अंदर कोई बहुत सटल डिफरेंस होगा, लेकिन वो भाषा का विज्ञान नहीं कह सकता है क्या है दोनों में अंतर।
ट्रस्ट
पे
भी ट्रस्ट है,
हरे कृष्णा। विश्वास में निश्चय ज्यादा होता है, श्रद्धा वॉलंट्री कोई चीज है, श्रद्धा वॉलंट्री है, विश्वास में बहुत निश्चय है, मुझे विश्वास है कि मुझे ये मिलेगा, श्रद्धा में इतना वो नहीं लगता है, निश्चय नहीं आदमी को, तो मुझे इस बात का विश्वास है कि ऐसे होगा, तो विश्वास का मतलब कुछ अथॉरिटी के साथ आदमी को पहले का एक्सपीरियंस है उसको बहुत अच्छा, इसलिए विश्वास है। श्रद्धा जो ब्लाइंड फेथ तो नहीं है, श्रद्धा एक वॉलंट्री किसी चीज को एक्सेप्ट करने का, लेकिन ये जैसे आप लोग आए हैं नए लोग, कुछ ये आपकी श्रद्धा थी, आपको किसी ने कहा चलो चलते हैं पंचीज में, अच्छा भगवद गीता है अच्छी बात है चलो सुन के आते हैं, ये श्रद्धा है, लेकिन जो हमेशा आ रहे हैं उनको विश्वास है कि भाई ये तो जाना बहुत जरूरी है, तो हमारा निश्चित रोज का काम है, तो विश्वास में ऐसे लगता है कि कुछ उसमें उसका निष्ठा ज्यादा आ गई है, तो विश्वास निष्ठा तक पहुंचे, श्रद्धा निष्ठा तक पहुंचेगी तो विश्वास का रूप ले लेगी, ऐसे लगता है। तो विश्वास का मतलब है कि कुछ भाई ये तो निश्चय मुझे दे, ये बात मुझे इसके ऊपर विश्वास है, ये मेरा बेटा है, ऐसे कैसे कर सकता है, तो विश्वास का मतलब मेरा पहले उसका एक्सपीरियंस है कि ये ऐसे ऐसे ही होगा, तो विश्वास जो है ज्यादा उसकी सुपरलेटिव श्रद्धा कर करके आदमी को निश्चय हो जाता किस चीज का, तो फिर वो विश्वास निश्चय आत्मिक लगता है, और श्रद्धा वॉलंट्री बिगनिंग है, मेरे को श्रद्धा हो गई है भाई तो बहुत अच्छी, श्रद्धा बदलती रहती है और विश्वास फिर बदलता कम है ऐसे लगता है, तो फेथ कैन चेंज, प्रभुपाद सेड फेथ कैन चेंज, आज मेरा फेथ इसके ऊपर कल उसके हो जाए, लेकिन निष्ठा हो जाने के बाद चेंज नहीं होता है, तो ऐसे हो सकता है, मतलब ये एक अनुमान है, ऐसे लगता है शब्दों के जीवन में जैसे यूज में आते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि मैं बच्चा ये नहीं कहता मेरे को पिता के ऊपर श्रद्धा है कि मेरे को खिलाएगा, तो विश्वास है वो, तो वो विश्वास में आता है भाई, ये विश्वास उसका जो है सुपरलेटिव है। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा सतोगुण की श्रद्धा है, सतोगुण की श्रद्धा है, सतोगुण की श्रद्धा है, श्रद्धा सतोगुण की ही है। शुद्ध सतोगुण में तो तीन गुणों से ऊपर आएगा तो शुद्ध सतोगुण में आएगा, तो ये तीनों गुणों की श्रद्धा का वर्णन चल रहा है यहां। इसलिए भगवद गीता में बहुत दो जगह पर सिर्फ तीन गुणों से ऊपर की बात की हुई है, इसलिए इससे ऊपर सुपरलेटिव भी कुछ शिक्षाएं हैं। जो उद्धव की शिक्षा भगवान ने दी है भागवत के 11वें स्कंद में, उसमें तीन गुणों से ऊपर चौथे गुण का वर्णन है, शुद्ध चतुर्गुण का वर्णन है उसमें, इसमें नहीं है। उनके ऊपर श्रद्धा होती है वो तो आता है, उनके हर जिस देवी देवता के ऊपर श्रद्धा होती है वैसे वो पूजा करता है, वैसे उसको फल देता है, वो श्रद्धा में आता है। हाँ, सदा सतोगुण की श्रद्धा बताई गई, वो श्रद्धा सतोगुण की। तो इसलिए भगवान ने इसलिए ये प्रश्न उठाए अर्जुन ने, इसलिए है कि उनकी श्रद्धा सतो रजो तमोगुण की। ये देखो कि जो खान पान वो सब बातें उसमें आगे डिस्क्रिप्शन एक चीज की नहीं, सबकी देखनी पड़ेगी। मैं गुरु नानक साहब का पुजारी हूं ये कहना तो आसान है, भाई मैं सिख हूं, गुरु मैंने शिष्य हूं, सिख का मतलब मैं शिष्य हूं, मैं गुरु का शिष्य हूं, लेकिन गुरु की शिक्षा भी तो मानता है कि नहीं मानता है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो गुरु ने कहा है खान का खाना है, कान पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो भी करता है कि नहीं करता है। गुरु सिख आपको शिष्य मानता है कि नहीं मानता, उससे भी तो पूछना पड़ेगा ना। तो उसने बता दिया है कि वो इस शिष्य में कौन सी कैटेगरी में आता है। ये इसलिए प्रश्न अर्जुन ने पूछा है ना कि श्रद्धा तो उनकी बहुत अच्छी है, अपने जो भी उन्होंने अपना खड़ा किया है सिद्धांत उसके ऊपर, लेकिन वो कौन सी सतोगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की कौन सी है, क्योंकि शास्त्र में तो नहीं है वो। ये तो प्रश्न शास्त्र में है ही नहीं, अब बताइए कि उसका क्या करें। श्रद्धा उसकी बहुत है, बहुत से लोग हैं यहाँ, इतने पंथ हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो उनकी श्रद्धा उसके बाकी चीजों के ऊपर हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। खाता क्या है वो, क्या देता क्या है, लेता क्या है, उससे पता लगेगा कि वो कौन से गुण में है, सतोगुण में, रजोगुण या तमोगुण में है। तो तमोगुण में है कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ। तो बहुत से लोग तमोगुण में, इसमें कोई परेशानी की बात थोड़ी है, तो तमोगुण में रह सकता है आदमी। गुरुद्वारे में जाते हैं हम गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब के पूजने वालों के बहुत दोस्त हैं। मैं जब जाता हूं कहता हूं आपने गुरु ग्रंथ साहब को जो भोग लगाया मेरे को दो, तब मेरे को कड़ा प्रसाद देते हैं, उसमें न लहसुन है न प्याज। भगवान को भोग वही लगता है गुरुद्वारे को जो ग्रंथ साहब रखा हुआ है, जो ग्रंथ साहब को भोग रखता है उसके अंदर लहसुन प्याज कभी नहीं बनता है, डलता है। मैं पूछ के देख लिया वहां, एक तो या चने की दाल बनाएंगे अर्पण, हमने नहीं करते, हमारे जो नहीं करते। ओ नीचे रोज प्रसाद में नहीं होता। आप अपने लिए कुछ भी बनाओ तो कोई मना नहीं है, लेकिन वहां नहीं जाता।
मैं जो वो लोग बनाते हैं तो उस लंगर में होता है,
लंगर में होता है, लेकिन लंगर भोग नहीं लगता है ग्रंथ को। अरे बाबा उस बड़े गुरुद्वारे में जाते हैं जो, वहां तो सब बाहर ले जाते हैं, कड़ा प्रसाद ही आके भोग लगता है, वहां थोड़ी ला ऐसे सामान होते। और मैं तो सिंधियों के घरों में कई में जाता हूँ, गुरु ग्रंथ का अखंड पाठ होता है, भोग नहीं लगेगा वहां।
वो थाली लेके आते हैं उसको रख के और उसकी थाली में रख के और ढक के उसको पूरा भोग देते हैं।
अब ये शुरू कर दिया है तो और बात है, लेकिन असल में कभी कभी नहीं लगता था, नहीं लगता था, कड़ा प्रसाद होता था, नहीं तो सूखा मूंग, ये कोई सूखी चीज होती थी, दो चीजें ही बढ़ती थी, लंगर तो फिर हमारी चॉइस में जो हमें बनाना है वो हम बनाएंगे, तो उसमें तो कुछ लोग कुछ भी बना ले तो हम उसका मना नहीं कर सकते, लेकिन वहां नहीं जाएगा। अरे वहां नहीं जाएगा कि जब अखंड पाठ जो घर में रखाते वो सात तीन दिन तो कम से कम या सात दिन का पाठ हो तब तक मांस वास घर में होता ही नहीं है ना, और फिर कहते हैं अभी निकालो गुरु को बाहर घर में, क्योंकि हमें माना हमें तो खाना पीना है भाई, बहुत दिन हो गया तीन दिन गुरु का, यहाँ ज्यादा नहीं बिठाता कोई गुरु को घर में, क्यों क्या बहुत इसमें एज इट इज क्लियर कहीं नहीं है, तीनों गुणों से ऊपर आ जाओ तब मेरे को प्राप्त करोगे, दो जगहों पे ऐसे है, दूसरे अध्याय में है और फिर चौदहवें अध्याय में शायद वो दूसरा है, उसके अलावा भी है, निस्तर गुणों भव अर्जुन, तीन गुणों से ऊपर आ जाओ, कहीं है दो जगह पे। बहरहाल ये सब बातें हैं, सीधा रास्ता जो शास्त्र में बताया हुआ हो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जब है तो उसको पालन करना चाहिए। देखो अज्ञानता में आदमी कुछ भी करता है कोई बात नहीं, लेकिन जानने के बाद नहीं करना चाहिए, जब शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो शास्त्र के ऊपर चलना चाहिए। मान सम्मान सबको देना चाहिए, लेकिन शिक्षा वो ग्रहण करनी चाहिए जो शास्त्र के अनुसार हो, जो जीवन में लाभदायक हो, जो मानव जन्म के उद्देश्य को प्राप्त करने में सरलता से और बहुत ही सुगमता से हमारे को उस मंजिल तक पहुंचाए, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली हो, तो उसको अपनाना चाहिए जीवन में। वैसे फिर भी आदमी की श्रद्धा कई जन्मों की बनी हुई है, ये स्वभाव तब बदलता है जब कोई अच्छा संघ मिलता है। इस पूरे अध्याय में एक ही बात प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि स्वभाव तो कई जन्मों का बना हुआ है, ये श्रद्धाएं कई कई जन्मों की है, लेकिन गुरु के संग में आने से लिखा है स्पिरिचुअल मास्टर की एसोसिएशन में, ये पुरानी श्रद्धाएं जो है, जो नीचे स्तर की श्रद्धाएं हैं, रजो तमोगुण की श्रद्धाएं, इनसे आदमी मुक्त हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो असल में इन सब श्रद्धामय तो हम सब के, हमारी श्रद्धाएं हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आई है, हमारे गुण हमारे अपने जन्मों जन्मों के स्वभाव से बने हुए, लेकिन वो बदलते बहुत मुश्किल है बदलना, बहुत मुश्किल है बदलना, लेकिन बहुत अच्छे संग में आने से उनमें बदलने उसमें तब्दीली आने की उसमें बदलने की संभावना है। तो अच्छे संग में आने से ही बदलने की संभावना है, इसलिए एक ही चीज शास्त्र में बताया गया है, भगवान की भक्ति, भक्ति जायते भक्त संगे, और कोई रास्ता नहीं, और कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं है सवाय भक्त के संग में। भक्ति जायते भक्त संगे, और कोई ना उपाय, और कोई उपाय नहीं है उसका। तो जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब किसी आपने से प्रगतिशील आगे बढ़े हुए आध्यात्मिक साधु का संग करेंगे, तो जीवन में आस्ते आस्ते तब्दीली आएगी, चेंज आएगी, परिवर्तन आएगा, केवल संग से और कोई रास्ता नहीं। आप लोग यहां जो पुराने बैठे हैं, आपके जीवन में भी जो परिवर्तन आई है सात्विक भोजन करने की अथवा भगवान का नाम जपने की, ये भी तो किसी के संग के कारण आई ना, तो कोई संगी है जो हमारे में परिवर्तन लाता है, और ये परिवर्तन आना तब शुरू होता है जब आदमी भगवान का नाम जपना शुरू करता है। बिगनिंग, स्पिरिचुअल लाइफ की बिगनिंग ही शुरू होती है नाम जप से। जब आप जप शुरू करेंगे तभी आप समझ लिए कि आपका पहला कदम आगे बढ़ेगा, उससे पहले कदम आगे नहीं बढ़ता। तो कदम बढ़ता ही तब है जब जप करना शुरू करते हैं। देखा है प्रायः जो लोग भगवान का नाम का जप करना शुरू करते हैं वो आस्ते आस्ते आगे बढ़ भी जाते हैं। जो जप ही नहीं शुरू कर पाता है तो उसकी श्रद्धा ही होती है जो चलती रहती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती। तो जप करना बहुत जरूरी है, पहले शुरू करना, बिगिनिंग विथ। इसको हम कहीं कह रहे थे शायद एक सत्संग में, कि बीमार आदमी अस्पताल में चला जाए, डॉक्टर भी मिल जाए, दवाई भी लिख दे, बीमारी की भी पहचान हो जाए, लेकिन घर में आके दवाई खाए नहीं तो ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना। तो नाम औषधि है, सर्व दुखांदा औखद नाम, बहुत अच्छा गुरबाणी में लिखा है, सब दुखों की औषधि नाम है। तो नाम को जपना चाहिए ना, तभी तो दुख जाएंगे। तो दवाई तो पहले लेंगे तब ठीक होंगे ना, डॉक्टर से लिखा के आए लेकिन खाए नहीं तो फायदा होगा क्या बेटा? नहीं होगा ना। तो शास्त्र में लिखा हुआ है, साधु बता रहे हैं, तो उसको अपनाना चाहिए तभी फायदा होगा ना। तो जो प्रैक्टिस करते हैं तभी प्रगति होती है, तभी आगे आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़े। देखने वाला तो देखेगा, ठीक है आएगा, वो भी अच्छा है, उसको भी फायदा होगा, लेकिन आगे बढ़ना और फायदे होने में अंतर है। तो जब करना तो पहले आरंभ करना ही चाहिए, और जब करते करते आगे फिर सेवा करने की जब भावना मन में आएगी तो फिर लीप्स एंड बाउंड में प्रोग्रेस होगा। सेवा जब करने का मतलब भगवान की सेवा में कबूल पड़े आदमी, स्वीकार सुकृति हो, तो जब करने का मतलब भगवान की सेवा में लगने के लिए एप्लीकेशन देनी है, तो फिर सेवा के लिए मन में भावना उठेगी। जब करते करते सेवा करने की भावना आएगी, जब सेवा करने की भावना आएगी तो फिर भगवान की भक्ति में आगे आदमी बढ़ सकता है। और सेवा से ही भगवान के नाम में भी रुचि होगी और नाम से सेवा में रुचि होगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। हरे कृष्ण। विश्वास करो इस बात का, श्रद्धा करके आए हो, अब विश्वास कर लो कि भगवान का नाम जपना है। शांति माता जी विश्वास करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।